हरे कृष्णा। ये लेक्चर्स की सीरीज में हम लोग भगवत गीता के अध्याय कवर करेंगे। भगवत गीता का पहला चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, अब हम अध्याय दो से शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम श्रील प्रभुपाद ने गीता का सार दिया है तो बलदेव विद्याभूषण ने सांख्य योग, और विश्वनाथ चक्रधर ठाकुर ने आत्मा अनात्मा विवेक योग नाम दिए। तो इसमें इसका पहला श्लोक इस प्रकार है। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्र वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। ये जो श्लोक है, ये श्लोक संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को। और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि संजय ने आखिर कृष्ण को मधुसूदन शब्द से क्यों बुलाया। अगर हम पिछला अध्याय देखें तो पिछले अध्याय में अर्जुन जो है उसने अपना रथ के पीछे जाके बैठ गया, उसने धनुष गांडीव अपना रख दिया। हालांकि अर्जुन ने यह प्रतिज्ञा की थी कि अगर किसी ने मुझे बोला कि धनुष अपना छोड़ दो तुम कायर हो तो वो उसका वध कर देगा, लेकिन इतना शोक युक्त हो गया कि खुद ही छोड़ दिया उसने गांडीव को। जब उसने गांडीव छोड़ के वो बैठ गया तो एक व्यक्ति बहुत खुश हुआ और वो था धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र ने बोला, चलो अब सही हो गया सारा काम, अब जो है अर्जुन युद्ध लड़ेगा नहीं, अर्जुन युद्ध लड़ेगा नहीं तो पांडवों को जीत कौन दिलाएगा, तो अब जो ये सारा राज्य है मेरे पुत्र बहुत सुख से इसको भोगेंगे, तो बहुत खुश हो रहा था। तो संजय ने ये शब्द मधुसूदन यूज किया ये समझाने के लिए, ये मैसेज और संकेत देने के लिए धृतराष्ट्र को बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये टेम्परेरी विषाद है अर्जुन का अभी, क्योंकि वो कृष्ण के सामने मौजूद है, कृष्ण के साथ हैं, तो ये जो विषाद है, ये जो कन्फ्यूजन है, बिविल्डरमेंट है, ये जो अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि मोहित हो गया अर्जुन, वो सब अभी कुछ देर में दूर हो जाएगा। तो जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने पहले मधुसूदन का मतलब है मधु और सूदन, मधु मतलब मधु राक्षस असुर और सूदन का मतलब है वध करना। तो क्योंकि भगवान कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, इसलिए भगवान कृष्ण को मधुसूदन के नाम से बुलाया गया। जैसे भगवान को बोलते हैं मुरारी, मतलब मूर राक्षस जो है अरी, उनके शत्रु जो हैं मुरारी, वो कृष्ण है। तो इस तरह से भगवान के अनेक नाम हैं, भगवान के हर लीला के साथ भगवान के नाम जुड़े हुए हैं। और अगर आप श्रीमद् भागवतम देखें, दसवां स्कंद उठाएं, उसमें भगवान की अनेक लीलाओं का वर्णन है, वहाँ पर कहीं पर भी वर्णन नहीं आ रहा कि कृष्ण ने मधु नामक असुर को मारा था, है ना। एक्चुअली बहुत प्राचीन समय में भगवान ने विष्णु रूप में वध किया था मधु नामक, मधु और कैटभ का। एक्चुअली में हुआ यह था कि इसका वर्णन जो है कलिक पुराण और महाभारत में भी आता है इसका वर्णन, कि जब भगवान विश्राम कर रहे थे, योग निद्रा में थे, तो उनके नाभि से कमल खिला और कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और ब्रह्मा जी जो हैं वो सृष्टि के बारे में सोच रहे थे, तो भगवान विष्णु के दोनों कानों से जो है वैक्स, ईयर वैक्स बहनी शुरू हो गई। तो ये ईयर वैक्स जो कानों से जो मोम बह रही थी, वो उससे ये दो दानव प्रकट हो गए, इनका नाम है, एक का नाम था मधु और एक का नाम था कैटअप। और इन्होंने हजारों साल तपस्या की और तपस्या करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर लिया। सो लक्ष्मी जी प्रकट हुई, उन्होंने बोला अच्छा क्या मांगते हो, तो उन्होंने बोला कि हमें आप वरदान दो कि हम तभी मरेंगे जब हमारी इच्छा होगी। लक्ष्मी जी ने बोला तथास्तु और अप्रकट हो गई। अब तो ये दोनों बिल्कुल मतलब बेलगाम हो गए दोनों, मधु और कैटभ, और इन्होंने ब्रह्मा जी पे ही अटैक कर दिया और इनसे चारों वेद चुरा लिए इनसे। अब मतलब सोचने की बात है कि वेद ब्रह्मा जी के माइंड में है, माइंड से मतलब चारों वेद चुरा लिए, कितनी मतलब आश्चर्यजनक अद्भुत बात है। हाँ, और ब्रह्मा जी को वो वध करना चाह रहे थे, तो ब्रह्मा जी उनका कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाए, तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की शरण ली। लेकिन भगवान विष्णु तो योग निद्रा में सोए हुए थे, तो फिर ब्रह्मा जी ने योग निद्रा की शरण ली और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज जो इनको आप उठाएं और ताकि ये मेरी रक्षा कर सके, है ना। तो योग निद्रा ने हेल्प किया और भगवान को जगाया। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपनी सारी जो समस्या है उनको बताई कि ये मधु कैटभ ने ऐसे ऐसे किया है, मेरे से वेद भी चुरा लिए, मुझे मारना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु ने फिर हय ग्रीव अवतार प्रकट किया। हय ग्रीव का मतलब है घोड़े का शरीर है भगवान का, और उन्होंने मधु और कैटभ से लड़े और उनसे वेदों को तो ले लिया, लेकिन उनको मार नहीं पाए, है ना। क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि लक्ष्मी जी के वरदान से सुरक्षित थे कि जब तक वो नहीं चाहेंगे मरना, मरेंगे नहीं, और मरना कौन चाहता है। तो सो भगवान विष्णु ने उनको बोला, दोनों दानवों को, कि यार तुम तो बहुत पावरफुल हो और तुमने देखो कितने अच्छे से लड़ाई की है। और देखो मैंने भी तुमसे लड़ाई किया, तो अवश्य मतलब तुम लोग भी मतलब मेरे से संतुष्ट हो गए। तो देखो जैसे तुमने संतुष्ट किया मेरी पत्नी लक्ष्मी को और उन्होंने तुम्हें वरदान दिया, ऐसे ही मैंने तुम्हें संतुष्ट किया, तुम भी मुझे वरदान दो, तुम इतने पावरफुल हो। अगर तुम वरदान नहीं दोगे तो फिर कैसे तुम्हारी पावर का पता चलेगा। तो घमंड में आके उन्होंने बोला ठीक है बोलो क्या मांगते हो। तो भगवान विष्णु ने बोला ठीक है, आप मुझे वरदान दो कि आप मरने की इच्छा करो। तो उन दोनों ने मरने की इच्छा की नहीं और मर गए वो दोनों, है ना। तो इस तरह से भगवान ने रक्षा की और लक्ष्मी जी के जो लक्ष्मी जी का वरदान है उसकी भी रक्षा की और ब्रह्मा जी की रक्षा की और मधु कैटभ का वध किया भगवान ने। तो ये वध तो एक्चुअली विष्णु जी ने किया था। तो कृष्ण को मधुसूदन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एते चाम्स कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि जितने भी स्वांश हैं, जितने भी विष्णु तत्व हैं, वो सारे अंश हैं और कृष्ण अंशी हैं, है ना। और ब्रह्मा जी ने भी इसकी पुष्टि की है ब्रह्म संहिता में, हाँ, कि राम नरसिंह रामादिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम अकरोत् भुवनेषु, किंतु कृष्ण स्वयं संभवत् परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि राम आदि जो अवतार हैं, जो अवतरित होते हैं इस धरा धाम पर, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, रक्षा के लिए भक्तों की और असुरों का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो ये जो सारे अवतार हैं ये भगवान के अंश या उनके अंश के अंश हैं। और भगवान कौन है? अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान जो है वो स्वयं गोविंद अर्थात कृष्ण है, जो सभी जितने भी उनके स्वांश है या विभिन्नांश है सबके स्रोत कृष्ण ही हैं। और कृष्ण भगवद गीता में बोल ही रहे हैं, है ना, कि हम सर्वस्य प्रभु, सब सब लोग मुझसे ही, भौतिक जगत भी मुझसे प्रकट हुआ है, आध्यात्मिक जगत भी मुझसे प्रकट हुआ है, और जितने स्वांश हैं, जितने विष्णु तत्व हैं, वो सब भगवान कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं। सो ये तो तात्विक दृष्टि से मधुसूदन का अर्थ हुआ। और इसका एक और दृष्टिकोण से हम मधुसूदन शब्द का अर्थ समझ सकते हैं। मधु का एक अर्थ होता है शहद। और मधुसूदन का अर्थ है कि जो मधु की जो मधुरता है उसको हरा देता है, वो मधुसूदन है, अर्थात कृष्ण। सो कृष्ण जो है वो मधु की, शहद की मधुरता को भी हरा देते हैं। इतने मधुर हैं कि शहद उनके सामने फीका पड़ जाता है ना, इसीलिए उनका नाम मधुसूदन है। जैसे भगवान का एक नाम है मदन मोहन, कि पूरे संसार को कामदेव ने मोहित कर रखा है, लेकिन कृष्णा ऐसे व्यक्ति हैं जो कामदेव को ही मोहित कर लेते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया मदन मोहन, है ना। और श्रीधर स्वामी टीका में बोलते हैं, वो एक और तात्विक दृष्टि से इसकी परिभाषा देते हैं। बोलते हैं कि जो झूठा अहंकार है वो शहद की तरह मीठा है और सबके हृदय में बैठा हुआ है, वो बिल्कुल स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे झूठे अहंकार ने अपनी जगह बना रखी है। और उसका काम क्या है? उसका काम है लोगों को आत्मज्ञान भुला देना, है ना। लोग भूल जाते हैं कि वो कौन है, हाँ, और भूल के वो शरीर को ही स्वयं मानना शुरू कर देते हैं। वो सोचते हैं कि मैं शरीर हूँ, अहम ममेति, सारे घर वाले, घर, कार, टैक्सी, ये सब मेरी वस्तु है, मेरी संपत्ति है ना। मधुसूदन का मतलब है कि कृष्णा जो है वो इस जो हृदय में जो फॉल्स ईगो बैठी है, हाँ, वो फॉल्स ईगो कृष्णा जो है वो ज्ञान की जो टॉर्च है, जो ज्ञान का दीपक है, ज्ञान की मशाल है, जो उससे कृष्णा झूठे अहंकार का नाश कर देते हैं। इसीलिए कृष्ण का एक नाम मधुसूदन है ना। और दूसरी बात यह है कि मधु का जो अर्थ है, मधु का एक अर्थ मधुमक्खी भी होता है और मधु का एक अर्थ कृष्णा भी है। सो श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि जैसे मधुमक्खी है वो कमल का जो शहद है, रस है, उसका आस्वादन करना चाहती है, इसी तरह से कृष्णा अपने भक्तों के प्रेम का, प्रेम रूपी जो शहद है, हनी है, उसका, प्रेम रूपी मधु का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। अब अगर हम रूपा गोस्वामी मधुसूदन शब्द की जो परिभाषा है वो प्रेम की, रस की दृष्टि से दे रहे हैं, और वो विदग्ध माधव के 5वें अध्याय में इसकी चर्चा कर रहे हैं कि एक बार श्रीमती राधा रानी और कृष्ण इकट्ठे बैठे थे तो एक मधुमक्खी श्रीमती राधा रानी को परेशान कर रही थी, बार बार उनके आसपास चक्कर लगा रही थी। सो कृष्ण ने एक अपने सखा को बुलाया, उसको बोला कि इसको भगा दो। एक सखी को बोला भगाओ इसको, मक्खी को। सो जब वो मक्खी भाग गई तो उस सखी ने आके अनाउंस किया कि मधु चली गई। हाँ, सो जैसे ही उसने बोला कि मधु चली गई तो श्रीमती राधा रानी ने सोचा कि कृष्णा चले गए। वो मधु शब्द जो है वो कृष्णा के लिए यूज कर सोच रही थी श्रीमती राधा रानी, और हालांकि वो भगवान कृष्ण के बिल्कुल समीप बैठी थी, फिर भी विप्रलम्ब भाव में चली गई और जोर जोर से उन्होंने रोना शुरू कर दिया। श्रीमती राधा रानी को जो रोते देखकर भगवान कृष्ण भी रोने लग गए। और जब वो दोनों रो रहे थे तो उनके आंसू आपस में मिल गए और उससे वृंदावन में एक सरोवर बन गया, उसका नाम है प्रेम सरोवर, है ना। ये रस की दृष्टि से जो है मधुसूदन शब्द की परिभाषा है ना। और प्रभुपाद जो अपने टीका में बहुत महत्वपूर्ण बातें बोल रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो इनके तात्पर्य की जो पहली लाइन है कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न पहचानने के लक्षण है ना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, नहीं? इंग्लिश में प्रभुपाद कह रहे हैं, मटेरियल कंपैशन, लेमेंटेशन एंड टीयर्स आर ऑल साइंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ द रियल सेल्फ, कि खुद ही को भूल गए। हाँ, और जो जो मटेरियल कंपैशन है, प्रभुपाद कह रहे हैं ये मटेरियल कंपैशन है, भौतिक करुणा ये अज्ञान की निशानी है। ये जो भौतिक करुणा है ये बेसिकली क्या हो रहा है कि व्यक्ति डूब रहा है, उसके कपड़ों को बचा रहे हैं, वो व्यक्ति डूबता चला जा रहा है। नहीं, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भैया भारी कपड़े क्यों उसके बचा रहे हो। हाँ, उसके भारी कपड़े को बचाने की जरूरत नहीं है भैया, उसको बचाओ जो कपड़ों के लिए शोक कर रहा है वो तो शूद्र है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो भारी पहनावा के लिए शोक करता है वह शूद्र है, कपड़ों के लिए कौन शोक करता है। ठीक है, कपड़ा था बहुत अच्छा था, आज मतलब अब खराब हो गया, पुराना हो गया, फट गया, फेंको, दूसरा कपड़ा ले लो। नहीं, इसमें इतना मतलब परेशान होने वाली क्या बात है। अगर कोई कपड़ों के लिए शोक कर रहा है तो फिर तो वो बेवकूफी कहलाएगा ना। तो हालांकि लोग कह सकते हैं कि देखो अर्जुन तो देखो कितना भाव प्रधान है उसके अंदर। नहीं, वो ये कह रहा है कि रोने लग गया कि मैं मतलब कैसे अपने गुरुओं के, अपने बंधु बांधवों के ऊपर वार करूंगा मैं। तो ये तो मतलब अच्छी बात है, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये अच्छी बात नहीं है एक्चुअली में। ये अच्छी बात है भौतिक दृष्टि से, लेकिन अगर हम आत्मा की दृष्टि से देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो बिल्कुल गलत बात है ना। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद कहते हैं जैसे अगर कोई स्त्री है, वो बहुत सज सवर के पूरा मेकअप करके वो स्टेज पे गई डांस करने के लिए, और जब पर्दा खुला तो उसने सामने देखा कि उसके घर वाले बैठे हैं, तो उस समय उसको लज्जा करना शोभा नहीं देता। उसका काम है उस समय वहाँ पे परफॉर्म करना, और तो उसको परफॉर्म करना चाहिए। इसी तरह से अर्जुन क्षत्रिय है, उसका काम है लड़ना, और अगर वो नहीं लड़ेगा तो मतलब यहाँ भी प्रॉब्लम है, और अगर जब भी मरेगा, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, तो जब भी मरेगा तो आगे जाके उसको स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा, उसको वो नारकीय लोकों में वास होगा। नहीं, हालांकि अर्जुन बहुत ही विषाद का प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कृष्णा अगले श्लोक में आप देखेंगे कि कृष्णा जो है वो इससे प्रभावित नहीं हो रहे। कृष्णा कह रहे हैं क्या नॉनसेंस है, क्या कर रहे हो, मतलब आप ऐसा आखिर क्यों कर रहे हो। तो भगवत गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुना। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में एक कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हाँ, जो भी काम करो, आफ्टर ऑल उसका एक गोल होता है ना, कि मतलब लोग सदियों तक बात करें, एग्जाम्पल दें, और मतलब आप क्या एग्जाम्पल सिद्ध करो, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरोजना यह स यत प्रमाणम कुरुति लोकस्तद अनुवर्तते। तो आप आदर्श हो भैया, आप मतलब ऐसे कैसे आप व्यवहार कर रहे हो, आप यहाँ पर आए हो, पूरा सारी बात चीत हो गई, मतलब अब आप ये इस तरह का आपके मन में ये कलमश आया कैसे? लेकिन अगर आप प्रभुपाद का जो प्रपोर्ट है, तात्पर्य अगर आप देखें, प्रभुपाद ने काफी समय लगाया है श्री भगवान उवाचा एक्सप्लेन करने में। हालांकि भगवान पहले भी बोल चुके हैं कि देखो अर्जुन, है ना, जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला कि आप उभयोर सेनियोर मध्ये रथम जो रथम स्थाप्य मैं च्युता, कि हे कृष्ण हे अच्युत, आप दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित कर दो, तो भगवान ने रथ स्थापित करके बोला जब देख लो भैया। लेकिन एक कंप्लीट श्लोक भगवान ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे बोल रहे हैं और अलग से दिखाया है श्री भगवान वाचा, पहली बार ये शब्द आया है, तो इसलिए प्रभुपाद बहुत समय लगा रहे हैं इस शब्द को एक्सप्लेन करने के लिए, है ना। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और प्रभुपाद बता रहे हैं कि देखिए, सो भगवान कृष्ण के लिए श्री भगवान उवाचा शब्द प्रयोग किया गया है और भगवान की उन्होंने परिभाषा भगवान की परिभाषा दी। उन्होंने बोला कि देखो, जिनमें जो छः के छः लक्षण है, हाँ, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव षन्नाम भग इतिंगना, कि भग मतलब भगवान शब्द जो है दो उसके संधि विच्छेद करो तो दो पार्ट हो जाते हैं, भग और वान। वान का मतलब है स्वामी और भग का मतलब है ऐश्वर्य। एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान का मतलब है कि जो पराशर मुनि ने ये परिभाषा दी थी भगवान की, और पराशर ऋषि ने कहा कि देखो, जिनमें पूरा ज्ञान, पूरा बल, पूरा वैराग्य, पूरी सुंदरता, हाँ, और पूरी प्रसिद्धि जो है, सुंदरता, हाँ, जिनके अंदर है, वो भगवान है, है ना, वो भगवान है। सो और प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो भगवान जो शब्द है ये इसको तीन स्टेजेस में इसको अनुभव किया जा सकता है। और उन्होंने प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहे हैं भागवतम का, पहले स्कंद के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक, वदन्ति तत्तत्व विदस तत्त्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि जो आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, जो समझने का प्रयास कर रहे हैं अध्यात्म को, वो लोग भगवान को तीन स्टेजेस में समझ सकते हैं। और वो स्टेजेस क्या हैं? ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान। ब्रह्म का मतलब प्रभुपाद ने आगे सूर्य के दृष्टांत द्वारा प्रभुपाद ने समझाने का प्रयास किया। प्रभुपाद कह रहे हैं, देखो सूर्य की किरणें हैं, वो ब्रह्म की तरह है। हाँ, जैसे ब्रह्म है, निराकार है, सूर्य की किरणें कोई आकार नहीं है, है ना, सो वो ब्रह्म है। और फिर जो सन ग्लोब है, वो आप समझ लो कि परमात्मा है। हाँ, वो दिख रहा है। हाँ, अगर हम सूर्य की किरणों को से पार जा सके तो हम सन ग्लोब, सूर्य ग्रह को हम देख पाएंगे, तो वो परमात्मा साक्षात्कार की तरह है। और अगर कोई सुपर इंटेलिजेंट होगा, वो प्रवेश कर गया सूर्य ग्रह में, वहाँ पे वो सूर्य देव, जो सूर्य ग्रह का स्वामी है, अधिष्ठाता देव है, उनसे मिल जाएगा। और तो वो भगवान रियलाइजेशन है, वो भगवान साक्षात्कार है ना। सो और फिर ये सब बात करते करते फिर प्रभुपाद ने ब्रह्मा जी को भी कोट किया, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, कि ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं किंतु कृष्ण परम है क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। हाँ, भगवान का एक नाम है असम ऊर्ध्वा, कि कोई व्यक्ति ना तो भगवान के समान है ना ही उनसे अधिक है। इसका मतलब है भगवान सर्वश्रेष्ठ है, वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद है और समस्त कारणों के कारण है। आदि भगवान गोविंद है मतलब भगवान का कुछ कारण नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं, भगवान देवकी माता देवकी के गर्भ से जन्म लेते हैं, यशोदा माता के गर्भ से भगवान जन्म लेते हैं। तो क्या भगवान अजन्मा है, क्या भगवान अनादि है, या क्या भगवान का कुछ कारण है, भगवान की पूर्ण परिभाषा क्या है? तो हमारे आचार्य बताते हैं कि यशोदा नंदन कृष्णा वो आदि पुरुष है, आदि भगवान है। अर्थात भगवान अजन्मा है, भगवान आदि है, लेकिन फिर भी वे यशोदा नंदन है, है ना। तो इसीलिए भगवान को योगेश्वर कहा जाता है। भगवान में सभी विरोधी गुणों का पूरी तरह समावेश हो जाता है। कितने भी विरोधी गुण होंगे और भगवान में प्रकट होंगे तो एकदम कल्याणकारी बन जाएंगे और भगवान की शोभा बढ़ाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति चोरी करे तो चारों तरफ से उस पे उसको लांछन लगेंगे, लोग उसको बुरा मनाएंगे, बोलेंगे गलत व्यक्ति है, बुरा आदमी है, दूर रहो इससे। लेकिन जब कृष्ण चोरी करते हैं तो वो मक्खन चोर के रूप में फेमस हो जाते हैं। कोई लड़ाई से भाग जाए तो लोग बोले कायर है, लेकिन कृष्णा जब लड़ाई के मैदान से जाए भागते हैं तो भगवान कृष्ण रणछोड़ के नाम से फेमस हो जाते हैं। आप बड़ौदा के पास एक जगह है डाकूर, तो वहाँ पे रणछोड़ राय का मंदिर है। आप वहाँ जाके देखो, वहाँ पे भगवान की रणछोड़ राय के नाम से भगवान की पूजा हो रही है और बहुत ही भक्ति से लोग बहुत दूर दूर से लोग भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, है ना। सो अब भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को जो उसकी जो विषाद था उससे भगवान ऐसा नहीं, ओ कोई बात नहीं, चलो हो जाता है, घबराओ मत, भगवान ने ऐसा नहीं बोला। भगवान बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट भगवान ने रिस्पॉन्ड किया, है ना। और प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में 1968 में प्रभुपाद ने लेक्चर दिया था लॉस एंजलिस में, और प्रभुपाद ने बोला देखो आप मतलब क्या मतलब बिल्कुल बेकार बात कर रहे हो। और प्रभुपाद कह रहे हैं देखो कृष्णा अगर कुसुमाद अपि कोमल है, फूल से भी कोमल है, तो व्रजाद अपि कठोर भी हैं, वो वज्र से कठोर भी हैं कृष्णा। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कृष्णा हर बार आपकी जो पुकार है भक्तों के दुख में वो हर बार सांत्वना ही देंगे, कई बार भगवान डांट भी सकते हैं, है ना। तो जैसे एक पिता है, पिता कई बार बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो तो उनको सांत्वना देने की जगह डांटता भी है, है ना। और हम आगे जाके देखेंगे, प्रभुपाद कह रहे हैं आगे जाके आप देखना कि जो कृष्ण ने उसको डांटा अर्जुन को, वो अर्जुन के लिए फायदेमंद साबित हुआ। और अर्जुन ने बोला कि आपकी कृपा से अब मेरा जो भ्रम है वो अब दूर हो चुका है, है ना। सो अगर आप भगवान से कुछ मांगो, अगर भक्त भगवान से कुछ मांगता है, भगवान और भक्त अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा है और भगवान उसके बदले में उसको और ज़्यादा उस पर गुस्सा कर रहे हैं, उसको डांट रहे हैं, भगवान उसको इमीडिएट रिलीफ नहीं आ रहा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो जो फ़ायदा अर्जुन को हुआ वो फ़ायदा हम लोगों को भी होगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, क्योंकि कृष्णा जो है वो सर्व मंगलमय है। भगवान की, भगवान का प्रेम, भगवान की करुणा और भगवान की डांट वो एक ही बराबर है। उसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि भगवान ने पूतना का वध किया तो पूतना का वध करने से भगवान ने उसको अपनी साथ में माँ का दर्जा भी दिया। और भगवान ने पूतना क्या, भगवान ने जितने असुरों का वध किया सभी को उससे लाभ ही हुआ, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। नहीं सो तीसरे श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं क्लैब्यम मा स्म गम पार्था नैतत्वी उपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोतिष्ठ परंतपा कि हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता परंतपा, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सो यहाँ पर जो भगवान है वो अर्जुन को प्रथा पुत्र के नाम से संबोधित कर रहे हैं। जो प्रथा है वो भगवान कृष्ण की बुआ है, भगवान कृष्ण के पिता की वसुदेव की बहन है, इसलिए ब्लड रिलेशनशिप है अर्जुन का कृष्ण से, है ना। सो भगवान कह रहे हैं मतलब यार, आप मेरे से रिलेटेड हो और आप अगर ऐसी बात करोगे तो मतलब फिर कैसे काम चलेगा आपको, और नॉलेज होनी चाहिए और आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई क्षत्रिय युद्ध करने से मना कर दे फिर किस बात का क्षत्रिय, फिर तो वो क्षत्र बंधु है। जैसे कोई ब्राह्मण है अगर उसमें ब्राह्मणोचित गुण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है, वो ब्रह्म बंधु है, है ना। सो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि भैया इतने ये जो आप इंद्र के पुत्र हो, मतलब इंद्र जो है उसमें इतनी शक्ति है, इतना बलशाली है इंद्र और सोच समझकर काम करता है, तुम कुंती के पुत्र हो प्रथा के, मेरे से संबंधित हो, इतने तुम्हारे धनंजय नाम है तुम्हारा, परंतप है, तुम शत्रुओं को शत्रुओं का दमन करने वाले हो, परंतप का मतलब शत्रुओं का दमन करने वाला, तो तुम पूरा संसार जीतने की शक्ति है तुम्हारे में, मेरे तुम पर्सनल फ्रेंड हो, तो फिर मतलब ऐसी मतलब बातें तुम कैसे कर सकते हो, है ना। तुम्हें जो है ये जो कायरता है ये शोभा नहीं देती, ये जो इम्पोर्टेंस है, ये जो नपुंसकता है, ये तुम्हें शोभा नहीं दे रही, है ना। ये कंपैशन नहीं है, ये हृदय दौर्बल्य है। हाँ तो तुम ये मत सोचो कि हो सकता मुझे ये कहने, अर्जुन ये कहने की कोशिश कर रहा था कि ऐसा नहीं है मैं डरता हूँ किसी से, लेकिन मैं अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो मेरे गुरु हैं, उन पे कैसे हथियार चलाऊं, ये सोचकर मेरे पसीने छूट रहे हैं, ये सोचकर मैं व्यथित हो रहा हूँ। तो कृष्ण ने बोला कि ये मतलब करेक्ट जजमेंट नहीं है, ये करुणा नहीं है, ये अच्छी सोच नहीं है, बल्कि हृदय दौर्बल्य है। इसको छोड़ो और जो तुम्हारा नाम है उसको सार्थक करो, तुम्हारा नाम परंतप है और सामने जो है जो लोग जो काम ये लोग करने के लिए खड़े हैं वही काम तुम करो, ये लोग भी तो तुम्हारे पे हथियार चलाने के लिए उद्यत है, ये लोग पूरे तत्पर है कि भैया शंख बजेगा अभी लड़ाई शुरू हो जाएगी, अभी तीरंदाजी शुरू हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, जिसके पास जो हथियार है उससे एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे, मारने का प्रयास करेंगे, तो वो लोग ये कर रहे हैं, भैया तुम भी तो कर लो इस काम को, है ना। सो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि मतलब तुम कह तो रहे हो कि तुम धर्म के अनुसार, धर्म के कारण जो है कायरता के कारण नहीं बल्कि धर्म के कारण नहीं लड़ रहे, बल्कि बट तुम्हें यह समझ आना चाहिए कि जो धर्म है, धर्म का मतलब हर बार करुणा नहीं होता, धर्म का मतलब हर बार माफी देना नहीं होता, जरूरत पड़ने पर धर्म के अनुसार दूसरे को दंड भी देना पड़ता है ना। जो क्षमा का जो गुण है वो ब्राह्मण को शोभा देता है, क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। तो तुम बेकार में ये क्षत्रिय होते हुए तुम बेकार में जो क्षमा का जो गुण है इसका प्रदर्शन मत करो। अभी तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम युद्ध करो। हाँ, तुम क्षत्रिय हो, ब्राह्मणोचित व्यवहार करने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण बोल सकता है ठीक है मेरा बहुत नुकसान हो गया, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। हाँ, और प्रोपाद 1975 में प्रोपाद ने जोहानसबर्ग में लेक्चर में बोला, इस पर्टिकुलर श्लोक पे प्रोपाद ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, जो ब्राह्मण है वो बोलेगा यार चलो जो हो गया छोड़ो, मैं टॉलरेट करता हूँ, मैं माफ करता हूँ। लेकिन क्षत्रिय, क्षत्रिय टॉलरेट नहीं करता। क्षत्रिय का काम है अगर कुछ भी अनुचित हुआ है उसको ठीक करना। हाँ, अगर जिसका काम है, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में है जिसका जो शासन कर रहा है, अगर वो इस तरह से छोड़ना शुरू कर देगा तो चारों तरफ अराजकता फैल जाएगी। नहीं, अगर जो और अगर सपोज मनु संहिता का वचन है कि अगर किसी ने किसी का खून किया है तो राजा का कर्तव्य है उसको मार देना, उसका वध कर देना। और उसका वध करना क्रूरता नहीं है राजा की, उसका वध करना राजा की कृपा है, मर्सी है। क्योंकि अगर वो वध नहीं करेगा तो उसको बहुत सारे पापों का और बहुत क्लेशों का सामना करना पड़ेगा, है ना। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जो धर्म है, धर्म है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म का अर्थ है भगवान की जो वाणी है, भगवान की शिक्षा है। भगवान अगर बोल रहे हैं कि भैया उठो और युद्ध करो, तो फिर अपना हृदय दौर्बल्य त्याग कर युद्ध के लिए तत्पर हो जाना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है ना। इसको हम यहाँ पर अभी विराम देते हैं। तीसरे श्लोक तक हमने कवर किया, चौथे श्लोक से हम आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।